नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारत और ब्रिटेन ने सोमवार को दोनों देशों के बीच एफटीए को शीघ्र अंतिम रूप देने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दोनों पक्ष मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी से आगे बढ़ने को इच्छुक हैं। 12वीं भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता के समापन पर उन्होंने कहा, निश्चित रूप से एफटीए पर कुछ चर्चा हुई है। दोनों पक्षों के लिए मुख्य बात यह है कि इसे जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। हंट ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय कंपनियों को सीधे सूचीबद्ध किए जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, भारत ने कहा है कि वह भारतीय कंपनियों को सीधे सूचीबद्ध किए जाने के लिए LSE को एक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के रूप में तलाशेगा। हम इस दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाकर प्रसन्न हैं। सरकार विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों को और उदार बनाने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को ये बात कही। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि सऊदी अरब की कंपनियों के लिए भारत में विमानन, दवा, बल्क ड्रग्स, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण तथा कृषि तकनीक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने की काफी संभावनाएं हैं। यहां भारत सऊदी अरब निवेश फोरम की बैठक में उन्होंने कहा, सहयोग की जबरदस्त गुंजाइश है, जैसे कि AI, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, स्वचालन तथा अंतरिक्ष में, जहां हम अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र तथा विदेशी निवेश लाने के लिए अपने FDI मानदंडों को और उदार बनाने पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल अंतरिक्ष क्षेत्र में सिर्फ सरकार के जरिए ही उपग्रहों की स्थापना और संचालन के क्षेत्र में 100% तक FDI की अनुमति है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी ITI लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक लैपटॉप एवं माइक्रो PC को विकसित करने के साथ उन्हें बाजार में पेश किया। बेंगलुरु स्थित कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि स्मैश ब्रांड के तहत पेश किए गए ये दोनों उत्पाद बाजार में पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। ITI ने एसर, HP, डेल और लेनोवा जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए कई निविदाएं भी अपने नाम की हैं। ITI ने अपने लैपटॉप एवं माइक्रो पर्सनल कंप्यूटर को इंटेल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर विकसित किया है। इसके लिए दोनों कंपनियों के बीच डिजाइन एवं विनिर्माण संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। ITI ने दावा किया कि उसका छोटे आकार का PC किसी भी दूसरे पर्सनल कंप्यूटर की तरह गणना करने में सक्षम होने के साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भी उल्लेखनीय योगदान देता है। भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा एक क्रांतिकारी परियोजना साबित होगी और इससे वैश्विक कारोबार को भारी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ने सोमवार को ये बात कही। प्रस्तावित भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा की घोषणा शनिवार को संपन्न हुई नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में की गई। EEPC इंडिया के चेयरमैन अरुण कुमार गरोडिया ने कहा, इस गलियारे से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में और ज्यादा लचीलापन आएगा। इस परियोजना का मकसद भारत को समुद्र तथा बंदरगाह के माध्यम से पश्चिम एशिया के जरिए यूरोप से जोड़ना है। गरोडिया ने एक बयान में कहा कि ये महाद्वीपों में वस्तुओं तथा सेवाओं की आवाजाही को एक नई परिभाषा देगा, क्योंकि इससे रसद लागत में कमी आएगी और माल की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित होगी। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड का टोल संग्रह अगस्त 2023 में 24% बढ़कर 417.2 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में ये जानकारी दी। पिछले साल अगस्त में टोल संग्रह 336 करोड़ रुपए रहा था। बयान के अनुसार 13 टोल में से महाराष्ट्र के IRB MP एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड का कुल राजस्व संग्रह में सबसे अधिक 141.1 करोड़ रुपए का योगदान रहा। मासिक आधार पर राजस्व संग्रह में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जुलाई 2023 में राजस्व संग्रह 365 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू वृद्धि तथा विनियमित बाजारों में निर्यात बढ़ने से भारतीय दवा उद्योग के राजस्व में 8 से 10% की वृद्धि होने की उम्मीद है। भले ही अर्ध विनियमित बाजारों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो, एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सोमवार को कहा कि 186 दवा निर्माताओं के अध्ययन में ये बात सामने आई। ये आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष में इस क्षेत्र के 3.7 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व का करीब आधा हिस्सा है। क्रिसिल रिसर्च के निदेशक अनिकेत दानी ने कहा कि मौजूदा दवाओं और नई दवाओं के जारी करने से बिक्री भी 3 से 4% बढ़ेगी। घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की थोक बिक्री अगस्त में सालाना आधार पर 9% बढ़कर 3,59,228 इकाई हो गई। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने सोमवार को ये जानकारी दी। अगस्त 2022 में विनिर्माताओं द्वारा डीलरों को 3,28,376 यात्री वाहनों की आपूर्ति की गई थी। यूटिलिटी वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 34% बढ़कर 1,81,825 इकाई हो गई। यात्री कार की बिक्री 10% घटकर 1,20,031 इकाई रह गई, जो पिछले साल समान अवधि में 1,33,477 इकाई थी। वैन की थोक बिक्री भी 12,236 इकाइयों से घटकर 11,859 इकाई रह गई है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।